نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا اور کیا بتلائے آپ کو کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. فرشتے اور روح الامین اس میں رب کے حکم سے اترتے ہیں ہر کام کا فیصلہ لے کر. سلامتی ہے صبح کے طلوع ہونے تک. سورت القدر ترتیب میں 97 نمبر کی سورت ہے. بچپن سے ہم یہ سورت پڑھتے اور پڑھاتے بھی آئے اور بہت ساروں کو یاد بھی ہے. اس سورت کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں اور آج خاص طور پہ جب ہم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں تو تھوڑی سی آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کی جاتی گھڑیوں سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے. آخری عشرہ بالکل انہی دنوں کی طرح ہے کہ جب ایک بہت بڑی نعمت آپ کے ہاتھ میں آئی ہو اور اب وہ جانے والی ہے اور آپ ہمیشہ کی طرح یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سال بھی رمضان سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکی. اور یہ سوچ اکثر ہی ساتھیوں کو ان دنوں میں ہوتی ہے کہ ہم اس سال بھی رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جن کو ایک گمان تھا کہ ہم تو بعد میں آنے والی امت ہیں اور ہماری عمریں بہت چھوٹی ہیں, تو کیا ہم لوگ اس چھوٹی سی عمر میں اتنی نیکیاں کر پائیں گے جو پہلے لمبی عمریں پانے والے کر گئے؟ ان کا سوال کتنا حسین تھا, ہم نے تو کبھی شاید اس پہ سوچا بھی نہ ہو. تو ایک سوال جو اس صورت کی بنیاد بنا اور وہ کیا تھا کہ ہماری تو عمریں بہت چھوٹی سی ہیں, ہم تو جتنی بھی نیکیاں کریں گے لیکن ان لوگوں کی عمروں کے مطابق تو نہیں ہوں گی کہ جن کو اللہ نے 100-100 سال اور کئی سو سال کی عمریں دیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خوشخبری سنا دی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یعنی اس ایک رات میں جس کو عبادت کا موقع مل گیا اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کمی کو دور کرے گا. تو جس کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے ابھی تک رمضان سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا, تو ان آخری 10 دنوں کو اپنے لیے خوب محنت کرنے کا ذریعہ بنا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا مہینہ ہی بہت محنت کرتے تھے لیکن جب آخری عشرہ آتا تو جو روایت کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے کہ کمر کس لیتے تھے اور اپنی ازواج کو بھی کہا کرتے تھے کہ کوئی ان حجرے والیوں کو کہے, اپنی بیٹیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, سب کو پکار کر کہا کرتے تھے کہ عمل کر لو, کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ان آخری 10 دنوں کو ہم کس طرح سے گزاریں. ایک تو اس کا بہت ہی خوبصورت جو مسنون طریقہ ہے وہ اعتکاف کا ہے. ایک ہے مسنون اعتکاف, 2 شرطیں اس کی رکھ لیں, وہ رمضان میں ہی ہوتا ہے, 10 دن کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ 20 اور 21 کے بٹوین نائٹ میں اپنی اعتکاف گاہ پہ داخل ہوتے ہیں اور چاند دیکھ کر نکلتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں مسنون اعتکاف, یہ سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے. اس کی شرط مسجد ہے, کوئی مرد کرے یا عورت, اس کے بہت سارے دلائل ہیں, ضرورت نہیں اس وقت بات کرنے کی. انتم عاکفون فی المساجد, تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. اللہ کے نبی خود بھی اعتکاف بیٹھتے, اپنی بیویوں کو بھی اعتکاف مسجد میں بیٹھنے کا حکم دیتے اور آپ کی بیویوں کے حجرے لگتے تھے, حالانکہ ان کے گھر بھی ساتھ ہی تھے. یہ نہیں کہا کہ اپنا حجرہ تمہارا اندر ہی ہے, نہیں, مسجد نبوی میں آ کر بیٹھتی تھی. پھر ایک دفعہ ایک عورت جو استخاضا میں تھی, یعنی ایسا بلڈ جو پیریڈس کے علاوہ آتا ہے, تو اس نے بھی جب پوچھا کہ اللہ کے نبی میں اعتکاف بیٹھوں, آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ بیماری ہے کوئی بات نہیں. آپ نے اس کو بھی یہ بات نہیں کہی کہ تم پھر اپنے گھر ہی بیٹھ لو, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا مسنون اعتکاف, ہم نے تو کسی کو نہیں بتانا نا. دوسرا ہے عینی اعتکاف, 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں, 2 دن کے لیے بیٹھے, 3 دن کے لیے بیٹھ جائیں. اس پہ ظاہر ہے کہ پابندیاں اتنی سخت نہیں ہوں گی. آپ ویسے ہی کوشش کیجئے کہ ہماری زبان سے غلط بات نکلے ہی نہ, ہم اچھا بولیں. تو جو بہنیں بیٹھ چکی ہیں وہ ایسی سوچ لیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک ایسے موڈ میں لا رہے ہیں, لیکن اگر مسنون اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہی ہوگا اور وہ رمضان کے آخری 10 دن کا ہوتا ہے. اور اس سال چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت ساری مساجد بند ہیں, تو ہمارے وہ برادرز جو ہر سال یا عموماً اعتکاف پہ بیٹھتے تھے, اس سال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق کہ عام دنوں میں انسان جو نیکی کرتا ہے پھر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نیکی نہ کر سکے, तो उसके तहत अल्लाह ताला उसको उसका भी अजर देते हैं। तो बास लोग कहते हैं कि मर्द हजरात चूंकि इस साल मस्जिदों में नहीं कर सकते तो घरों में कर लें। तो फिर ये तो कुछ इसी किस्म का सवाल बन गया कि अगर हज भी ना हो सका तो क्या लोग अपने अपने मुल्कों में या अपने अपने शहरों में हज करेंगे? ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने कुछ इबादात को कुछ खास जगहों के साथ लगा दिया। बहुत सारी इबादात आप और मैं हर जगह कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, पूरी की पूरी ज़मीन है यानी नमाज हर जगह पढ़ सकते हैं, सदका खैरात भी हर जगह कर सकते हैं। लेकिन जब किसी भी इबादत के साथ जगह की और वक्त और मुकाम, मौका, दिन की तख़सीस हो जाए तो फिर उसके ऊपर आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ताला इस साल हमारे ब्रदर्स नहीं भी एतिकाफ़ बैठ सकेंगे, लेकिन उनके दिल में तड़प है, दर्द है, तकलीफ़ है। और हमारे वो भाई भी जो कभी बैठते ही नहीं थे, उनको गिल्ट हो रहा है कि कभी हम बैठते और इस साल तो मौका नहीं मिला, तो वो नियत कर लें कि अगले साल इंशाल्लाह ताला जो ही मौका मिलेगा हम ज़रूर करेंगे। ये तो है एक एतिकाफ़ का मसला। जब मर्दों के लिए ये हुक्म है तो औरतों के लिए तो बदरजाए उत्तम अल्लाह ताला ने नेकियों को बहुत आसान रखा है। औरत अपनी ज़ात के एतबार से कमज़ोर भी है और पूरे घर को साथ लेकर चल रही होती है। तो आप मैं किसी भी वक्त नेकी की नीयत से जम के बैठ जाएं, क्योंकि लफ्ज़ एतिकाफ़ का मानी होता है जम के बैठ जाना। ऐसी कैफियत हो जाए कि आपका ध्यान बिल्कुल इबादत में चला जाए। और किसी की बात दोहरा देती हूँ कि उन्होंने कहा कि जब हम ये पढ़ते थे कि सहाबे कुराम सारी सारी रात कुरान पढ़ते थे या इबादत में गुजारते थे तो उनको वक्त का एहसास नहीं होता था, तो मैं ये बात सुनकर हैरत होती थी। लेकिन अब जब किसी को उसके मनपसंद फ़ोन के साथ बैठे देखें, किसी भी गैजेट, किसी भी सोशल मीडिया पे वो एक दफ़ा एंटर हो जाएं तो कई घंटे का एहसास ना हो, तो हमें पता लग जाता है कि वाकई फिर उनको भी एहसास नहीं होता होगा। आप अपनी पसंद की किसी फेसबुक को खोल लें, किसी गैजेट पे हों, आप किसी भी मीडियम पे जाएं और वहाँ अपने दोस्तों और साथियों से बातचीत करें, जिस तरह वहाँ वक्त का पता नहीं चलता, इसी तरह एक सच्चे मोमिन को इबादत के दौरान या दीन के किसी काम के दौरान वक्त का पता नहीं चलता। तो लिहाजा आपके मेरे लिए तो बहुत ही गुंजाइश है। आप दिन का 1 घंटा कोई वक्त कोई जगह जब चाहें मुंतखब कीजिए कि अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ और इंशाल्लाह मैं इसे 1 घंटे में और कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ मैं मसलन कुरान पढ़ूँगी, या अगर आप कोई लेक्चर दे रहे हैं ले रहे हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बेनियाज है, वो आपको मुझे अजर दे सकता है। दूसरी बात यह है कि अब रमज़ान में हम इन 10 दिनों में क्या करें। तो पहली तो बात है कि दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इससे बेहतरीन फ़ायदा उठाने की तौफीक दें। जब तक हमारा जहन किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं होता हम तब तक वो काम कर नहीं पाते। नियत भी कीजिए, आज अगर कोई पाबंदी उठती है हम अगले दिन वहाँ मस्जिद में पहुँच जाएंगे, तो ये भी इंशाल्लाह उसके अंदर आ जाएगा। फिर दूसरी बात देखिए कि जब भी कोई काम करना होता है ना, तो उससे पहले ये चेक कीजिए कि जो काम मैं करूँगी कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उसके कबूलियत के रास्ते में रुकावट बने। बस आप देखिए कि आप बहुत ही अच्छा खाना बनाकर किसी ऐसी दोस्त के घर भेजें जिससे आजकल नाराज़गी चल रही है, तो हो सकता है कि वो बहुत खूबसूरत मज़े का देखने में अच्छा लजीज खाना भी कबूल ना करे, वापस भेज दे कि नहीं खाने को क्या करना है, मेरी तो आपसे बातचीत ही नहीं है। तो जब अल्लाह ताला के साथ हमारा मामला किसी भी ऐसी चीज़ में बिगड़ा हो जिसमें कोई हराम काम आ सकता है, अल्लाह की बहुत वाज़े नाफरमानी हो, तो जब हम अल्लाह को किसी वजह से नाराज़ कर चुके हों तो फिर याद रखिए कि हमारी नवाफिल इबादात की भी कबूलियत नहीं होती। तो लिहाजा इसके लिए अब ये नहीं है कि नवाफिल नहीं करने या ऐसी इबादात का इहतमाम नहीं करना, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को बेहतर करने की कोशिश भी करनी है और दुआ भी करनी है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब तक हम फ़राइज़ अदा नहीं करेंगे हमारे नवाफिल कबूल नहीं होंगे। बस अगर मेरे सर पे ज़कात है कई साल से लागू और मैंने वो अदा नहीं की, तो मैं फिर सदका खैरात आम तौर पे नवाफिल की सूरत में कर भी लूँगी, तो जब तक मैं वो फ़राइज़ नहीं पूरे करूँगी बात नहीं बनेगी। इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ। हम लोग जब पढ़ते थे तो उस वक़्त अमूमन पेपर जो आता था उसमें 8 में से 5 सवाल करने होते थे, और उसमें से अमूमन पहला सवाल लाजमी होता था, यानी बाकी सवालों में से कोई भी आप 4 कर लीजिए पहला लाजमी है। अब अगर बाकियों में से कोई पूरे 5 भी कर ले लेकिन पहला सवाल ना करे तो उसको आगे नहीं लेके जाते थे। हमारे दीन में हर चीज़ की अल्लाह ताला ने एक जगह रखी है, जिसको आप और मैं फ़राइज़ कहते हैं ना, ये लाजिम है, ये कंपल्सरी क्वेश्चंस है, वी नीड टू फुलफिल देम। हम कंपल्सरी को छोड़कर ऑप्शनल पे जब जाएंगे तो बाज़ दफ़ा फिर और ज़्यादा पकड़ होने का डर है। तो हम शौक़ से इबादत करें, हम तस्बीह नमाज अदा करें, हम तरावीह अदा करें, हम नवाफिल पढ़ें, बहुत ही बरकत की चीज़ है, लेकिन एक दफ़ा चेक कीजिए कि मेरे पर फ़र्ज़ तो नहीं है। 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लेना, अपने आप को दीन और ईमान और इस्लाम के ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन वट एवर यू विल डू इट विल बी एक्सेप्टेड। कोई किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना ले, लेकिन सारी किताबें घर में ही मंगा कर पढ़ता रहे, लिखता रहे, तो एंड ऑफ द डे उसको कोई मेडिकल की डिग्री मिलेगी। तो हमारे कल्चर में अमूमन नवाफिल का बहुत अहतमाम है। बाज़ वह पूरी पूरी रात जागना पसंद करते हैं किसी एक ख़ास रात के नाम पर, लेकिन हो सकता है सो जाएं और अगले दिन की फजर की नमाज़ अदा ना हो। तो हमें जिस चीज़ पे एक और मज़ीद गौर करना है वो क्या है कि हमारे सर पे कोई फ़र्ज़ ना हो। फिर उसके बाद आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ यह कि अकेले इबादत करते थे, अपने घर वालों को भी साथ लेते थे। सही मुस्लिम की रिवायत है 1172 कि आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का इतिकाफ़ करते रहे, फिर इनके बाद आपके अजवाजे मतहरात भी इतिकाफ़ करती रहीं। बल्कि बाज़ जगह तो ऐसा भी आता है कि आखिरी साल जो था उसमें आपने 20 दिन का इतिकाफ़ किया था, 2 दफ़ा दौर किया था, तो फिर क्या पता चला कि घर वालों को साथ लेकर चलें। देखिए, इज्तमाही इबादत आसान हो जाती है जब हमारे साथ हमारे प्यारे भी लगते हैं। रात के वक्त में इंसान थकन महसूस करता है, लेकिन जब सब मिल जाएं और घर का माहौल ऐसा बन जाए तो बहुत आसान है। और इस साल माशाल्लाह लॉकडाउन की वजह से ये काम बहुत आसान हो गया कि चूंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम फैमिली मेम्बर्स साथ ही रहते हैं, तो फिर एक किस्म की हारमनी और एक फ्रेंडशिप की कैफियत भी समझ आ गई कि जिसके बाद लोग एक दूसरे की कंपनी को इंजॉय भी करेंगे। फिर इसके बाद आप देखिए, घर के बच्चों को महरूम ना कीजिए। अल्लाह ताला ने शायद ये मौका हमें जो कहना चाहिए कि रेयर चांस या एक वंस अ वाइल्ड मौका जो दिया, वो इसीलिए दिया कि हम अल्लाह ताला से ये मदद मांगे कि हमारे बच्चों को हम अपने अमल से करके दिखाएं। अब जब आप पहले से तैयारी कर लें तो फिर इसके बाद एक और चीज़ की बहुत ज़रूरत है। पहली तो बात यह कि आप 10 रातें पूरी ही जाकें, क्योंकि बाज़ जगह चांद देखने पे कुछ इश्यूज बनते हैं, और अगर क्या हुआ 10 कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसी में एक ताक होगी, एक जुफ्त होगी। आज से ही अगर किसी पाकिस्तान और इंडिया के इलाके में शुरू हो रही हैं, इसी तरह आप अपने अपने हिसाब से, इवन अगर एक रात गुजर भी चुकी है और आपको आज इस बात को सुनने का मौका मिल रहा है तो नियत कीजिए। इसके लिए क्या करें कि दिन में दोपहर का जो इन बिटवीन टाइम होता है इसमें थोड़ा सा कैलूला कर लीजिए। दिन में जब आप थोड़ा सा सो लेते हैं तो अल्लाह के नबी की हदीस की रोशनी में पता चलता है कि इसकी वजह से हमें रात को जागना आसान लगेगा। फिर इसी तरह रात को खाना थोड़ा सा कम खाइए, यानी जिस रात जागना है इबादत करनी है तो आप इफ्तारी और डिनर लाइट लीजिए, ताकि फिर जागते रहने की वजह से खूब अच्छी भूख भी लगे, और उस दिन आप सहरी में फिर पराठे और अंडे और ऑमलेट जो आप खाना चाहें शौक से खाइए। तो इससे जिस्म हल्का फुल्का रहेगा, इबादत में सहूलत होगी। फ्रूट्स ले सकते हैं आप, स्मूदी बना लीजिए, यानी रिफ्रेशिंग फूड लें। बहुत हैवी खाना खाने से भी इबादत नहीं होती, और बहुत भूखे होने से और कमज़ोरी से और बीपी लो हो रहा है, शुगर लेवल डाउन है, ये नहीं होगी। फिर उसके बाद देखिए कि इस रात को अल्लाह ताला ने इसमें लैलतुल कद्र कहा, यानी फी लैलतुल कद्र कहें या मा लैलतुल कद्र, और आगे देखें तो लैलतुल कद्र है। सवाल पैदा होता है कि इस रात को लैलतुल कद्र क्यों कहते हैं। तो कदर लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में 3 मुख्तलिफ़ मानों में है, जिसको अगर आप देखें, पहली बात तो आप में सिंपल ले लें कदर की रात, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी। किसी ने कहा कि लैलतुल कदर कब है, तो जवाब किसी ने बड़ा खूबसूरत दिया कि हर वो रात जिसकी तुम कदर पहचान लो वो कदर की रात है। अल्लाह ताला तो हर रात में आसमान दुनिया पे नज़ुल फरमाता है जब आखिरी पहर शुरू होता है, और पुकार लगाता है कि कोई बीमार है जो मुझसे सेहत ले, कोई है जो गुनाहगार है तौबा मांगे, और इसी तरह से आप जो मांगना चाहें अल्लाह से लीजिए। लेकिन इस रात के लिए चूँकि ख़ास तौर पर तनज़्ज़ुलुल मलाइकत व रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम की बात की गई, तो यकीनन ये रात कदर वाली है। दूसरा, आप इसको कदर को लेंगे तंगी के मानों में, अरबी ज़ुबान में काफ दाल रा कदरा, इसके तंगी का मानी है। तंगी से मुराद है कि इस रात इतने फरिश्ते उतरते हैं कि आसमान से ज़मीन तक जगह फरिश्तों से भरती है, और तंगी का एहसास होता है। आप इसको महसूस कीजिए। जाहिर है कि जो रात इतनी प्यारी है और फरिश्ते आगे और फरिश्तों की कसरत से तंगी का एहसास है, इसीलिए फरमाया कि लैलतुल कदर की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उससे अगले दिन की जो सुबह होती है ना, उस दिन सूरज की रोशनी में किरणें नहीं होती। ऐसे लगता है जैसे मलगजा सा है, क्लाउडी सी फीलिंग आती है। क्यों? कि अभी फरिश्ते वापस नहीं गए और सूरज की चमक पूरी तरह हम तक नहीं पहुंची। एक तीसरा बहुत ही खूबसूरत मानी है जिससे हमारे इंडो पाक कल्चर के काफ़ी साथी सही तरह आगाह नहीं है, तो ज़रा सी तवज्जो इसमें मज़ीद चाहिए होगी मुझे भी अपनी और आपको भी। और वो क्या है कि ये रात तकदीरों के फैसले करने वाली रात है। ये वो रात है जिसमें आपके पूरे अगले साल का प्लानर और अगले पूरे साल का जो सेटअप है वो अल्लाह ताला फरिश्तों को देते हैं। आप कहेंगे कि हम तो आज तक ये 15 शाबान की रात, शबे बिरात कहते हैं या शबे बरात कहते हैं, उसके बारे में सुनते हैं। तो हकीकत है कि हम भी जिस कल्चर में ग्रोन अप हुए, जिसमें बड़े हुए, हम भी यही करते थे और समझते थे। और आज भी याद है कि वो बचपन की मासूम सी यादें, कि उस रात बैठकर सोचते ही रह जाते थे, पता नहीं अब्बू का पत्ता तो नहीं उतर गया, अम्मी का तो नहीं उतर गया। यानी उस उम्र में माँ बाप और भाई बहन ही तो सब कुछ लगते हैं। लेकिन जब कुरान खोला तो कुरान पाक में तीन मुकामात को अगर आप जमा कर लें, एक तो यही है, क्योंकि आप देखिए मिन कुल्ली अम्र का लफ्ज़ है, फरिश्ते इस रात में हर काम के लिए उतरते हैं। फिर इसी तरह से यही चीज़ आप ले लीजिए तो सूरत दुखान में अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश की, और वहाँ भी इसी मजमून को पेश किया कि ये कुछ फैसलों की रात है। वो जो सूरत दुखान की आयत है ना, उसकी वजह से कुछ लोग इसको शबे बरात के नाम पे शाबान के साथ जोड़ते हैं। लेकिन अब दोनों में पता कैसे चले कि वो लैलतुल कदर है वहाँ तकदीर के फैसले हैं कि इधर? तो फिर इसका जवाब आपको सूरत अल बकरा की आयतें जो रमज़ान के रोज़े के तसव्वुर के बीच में है, शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, गालिबन 185 आयत है सूरत बकरा की। देखिए अब तीनों चीज़ों को आप लिखिए। इधर ये पता चाह रहे हैं कि लैलतुल कदर में हर रात का फैसला हो रहा है, ठीक है, और ये भी पता है कि लैलतुल कदर रमज़ान की रातों में। सूरत दुखान से पता चल रहा है लैलतुल मुबारकतन, और उसमें भी हर चीज़ के फैसले होते हैं। तो अब पता क्या चला कि ये 15 शाबान की रात है या कोई इससे आगे पीछे की है? तो शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान से पता चला कि कुरान तो रमज़ान में उतरा। तो क्या पता चला कि कुरान पाक के बास हिस्सों को समझने के लिए उसी के बास हिस्सों को समझना ज़रूरी है। और जो बात हदीस से बहुत वाज़ेह तरह पता है, और वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही रिवायत से पता चलता है कि इस रात हमारे अगले पूरे साल के मामले दिए जाते हैं। अब इस शऊर से दुआ मांगिए, अल्लाह ताला इस आज से लेके अगले साल तक मेरे प्यारे, मेरे रिश्तेदार, मेरे साथी, जिनको भी तूने दुनिया में किसी तकलीफ में अगर मुब्तला करना है तो उसको निकाल दे, किसी की मौत का फैसला कर दिया है तो तू उसको ज़िंदगी दे, उसकी उम्र को बढ़ा, क्योंकि हदीस में आता है कि दुआ के साथ ज़िंदगी भी बढ़ जाती है। तकदीर से लड़कर उसको पलटाने वाली चीज़ों में दुआ से ज़्यादा मुअसर कोई चीज़ नहीं है। तो आप सूरह दुखान के भी अगर इब्तदाई आयात को नोट करना चाहें, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने बेशक इसको उतारा, किसको उतारा? कुरान को उतारा। कॉमन थिंग क्या है देखिए दोनों में, सूरत दुखान की आयत में और सूरत कदर में इन्ना अनज़लनाहु, और हु से सबको पता है कुरान की तरफ इशारा है। अल्लाह ताला कहते हैं हमने इस कुरान को नाजिल किया, किस में किया? लैलत मुबारक, बरकत वाली रात में। अब वहाँ बरकत वाली रात हम मान लेते हैं, कोई कबाहत नहीं है इसमें, कोई झगड़े की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, ये इल्मी बात है, जिसको समझ आ गई ठीक है, नहीं आएगी तो इस फाइन। हम बहुत सारी बातों पे दूसरों पे ट्रस्ट करते हैं, हम इंशाल्लाह इस बात पे ट्रस्ट करेंगे। वहाँ क्या कहा गया था? फी लैलत मुबारकत, हाँ एक बरकत वाली रात थी वो। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, बेशक हम ही वॉर्न करने वाले हैं, यानी हम डराने वाले हैं। आगे कहते हैं फी हक युफ़रकु कुल्लु अमरिन हकीम, बेशक इसमें अलग किया जाता है, डिसाइड किए जाते हैं हर काम हिकमत के साथ। अब यहाँ क्या है? मिन कुल्ली अमरिन हकीम, और उधर क्या है? तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वरूहु फीहा मिन कुल्ली अमर। तो मेरा ख्याल है कि बात वाज़े हो रही है कि दोनों आयतों में क्लेम यही है कि कुरान बरकत अली रात में उतरा, और यहाँ उसको बरकत अली रात कहा गया, उसको कदर वाली रात कहा गया, तो इसका डिसीजन हो गया शहर रमज़ान अल्लज़ी पे। तो क्या पता चला सारी बात का एंड अप क्या है कि इस रात में अल्लाह ताला अगली ज़िंदगी के मामलात को लेता है, तकदीरों के फैसले होते हैं। तो क्या करें? खूब भलाइयाँ मांगिए। फिर आप देखिए कि इस रात की इबादत 1000 रातों से बेहतर है, ज़ाया नहीं करना। और इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, कुरान का नाम नहीं है, इबादत की तीन बड़ी किस्में हैं। एक तो सबसे पहले रिचुअल्स हैं, जो कि वाकई हम नमाज, रोज़ा और इस तरह नवाफिल अदा करने से, कुरान की तिलावत से करते हैं। इसी तरह आप देखिए कि इबादत में इताअत भी है, सबमिशन है, बंदगी भी है, ग़ुलामी भी है। यानी इबादत में आप देखिए कि रिचुअल्स भी हैं, सबमिशन भी है, और इसके साथ स्लेवरी की फीलिंग्स भी हैं। हम जब अल्लाह ताला से कहते हैं या का ना बुदू, तो हम यही कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हम आपको भी मानेंगे और आपकी बात को भी मानेंगे। तो लिहाजा इबादत के लिए आप मुख्तलिफ किस्म की कैफियत को नोट कर सकते हैं। खूब नेकियां कमाने की रात है, सोएंगे भी अगर रात का कुछ हिस्सा, तो इस सोच के साथ आप सो भी सकते हैं कि अल्लाह मैं इसलिए रात का कुछ हिस्सा बीच का सोने लगी हूँ ताकि मैं आखिरी हिस्से में उठकर मजीद इबादत करूँ। मोमिन का सोना इबादत, उसका खाना इबादत, उसका काम करना इबादत। आप अपने बच्चों के लिए, घर के बुजुर्गों के लिए, शौहर के लिए सहरी बनाते हैं, पूरी शरह सदर के साथ बनाइए, क्योंकि आते मुत्तम खाना खिलाइए, भूखों को खिलाएं, साथ नफिल नहीं पढ़ पा रहे उस वक्त आप इस्तग़फ़ार करें। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो हमारे नबी ने सिखाई अपनी प्यारी जौजा को, वो क्या था? हज़रत आयशा सिद्दीका, जो आपकी प्यारी बीवी थी, देखिए घर में दो दो माह तक चूल्हा नहीं जलता था। छोटी सी उम्र में आयशा, इस उम्र की बच्चियों को इतनी समझ भी नहीं होती, लेकिन वो कितनी समझदार थी। फिर इसी तरह औलाद की नेमत भी नहीं थी अभी, तो अल्लाह के नबी से कहती हैं कि अगर मैं लैलतुल कद्र को पाऊँ तो क्या करूँ? तो आपने जवाब दिया, तुम ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका फुव्वुन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ कर। लफ्ज़ अल अफ़ है अल्लाह का नाम। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी सब लिसनर्स को कि हमारा पिछले सालों में एक कोर्स जो सिर्फ 3 दिन में हमने रमज़ान में किया था, उसका नाम ही फ़ाफ़ु अन्नी है। और अगर मैं भूलूँ ना, तो एवरी डे 2.5 आवर थे, यानी टोटल 7 आवर्स समथिंग की रिकॉर्डिंग्स थी। आप हर दो दो घंटे को डिवाइड करके अब से लेके रमज़ान के एंड तक सुनना चाहें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो उसमें हमने 3 चीज़ें की थी। एक तो उसका इंट्रो सेशन बहुत है कि ये दुआ क्या है। पहली दफ़ा लोगों ने इस दुआ को इस तरह समझा था कि जो हमारे पास उसका फीडबैक था कि आज पता चला कि यहाँ इन्ना का फुवन क्यों है, गफूर क्यों नहीं है, अल्लाह इन्ना काफ़ूबुन तो हिब्बुल अफ़वा क्यों है? क्योंकि अमूमन तो देखिए अल्लाह ताला के साथ लफ्ज़ माफ़ी का, गफूर रहीम के साथ आता है, मगफरत का लफ्ज़ है, लेकिन इतना कॉमन लफ्ज़ छोड़ के अल्लाह ने अल अफ़ क्यों कहा? तो बहुत ही प्यारी इसमें बातें हैं। सिर्फ इतना सा बता देती हूँ कि बख्श तो अल्लाह देगा गफूर में भी, लेकिन अफ़ क्या है कि उसके निशान भी मिटा दे। जैसे अरेजर के साथ आप पेंसिल से कुछ लिखे को मिटाते हैं तो थोड़े थोड़े निशान रह जाते हैं ना, अफ़ अल्लाह का वो लफ्ज़ होता है जिसका मानी है कि बिल्कुल क्लीन कर दो कि स्टेन्स भी बाकी ना रहे, हमारे दोस्तों को भी हमारे वो गुनाह याद ना रहे, हमारे घर वालों को भी ना पता लगे। तो ये दुआ मांगिए, देखिए इस एक दुआ में वो सब कुछ आ गया जो हज़रत आयशा की तलब थी। ये नहीं कि आयशा बेटा मांग लीजिए, आयशा घर मांग लीजिए, वो तो है ही, लेकिन मोमिन की सबसे बड़ी दौलत है कि उसका रब उसको मुआफ़ करते। तो लिहाजा इस दुआ को उठते बैठते पढ़ें, कोई गिनने की ज़रूरत नहीं, कोई ख़ास प्रोटोकॉल के साथ एक गेटअप में आने की ज़रूरत नहीं, बस अपने गुनाहों भरा दिल सामने लाइए, शर्मिंदगी के, नदामत के आंसू दिल में गुजारिए और तड़प के कहिए कि अल्लाह मेरे पिछले गुनाह माफ़ कर दे, एक दफ़ा मेरा नामा अमाल साफ़ कर दे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं इसको गंदा नहीं करूँगी। ठीक है, फिर इसके बाद आप ये कि इस रात में करें क्या कि जो इबादत की जाती है, तो आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन तहज्जुद के नाम पर 8 रकत, यानी 3 वितर जिसको हम कहते हैं, टोटल 11 रकत पढ़ते थे। वही आप देखिए कि रमज़ान में चूँकि उस वक्त हम मसरूफ़ होते हैं तो उसको ईशा की नमाज से जोड़ दिया जाता है, तो वो 11 है। आप क्या करें, हमारे असलाफ क्या करते थे, तरावियों को लंबा कर लेते थे, यानी इसी का एक नाम क़यामुल लैल है, इसी को आप तरावी का नाम कह सकते हैं, इसी को तहज्जुद कह सकते हैं, लंबी कर लीजिए। रात को ईशा की नमाज के इब्तदाई वक्त में 4 फर्ज जमात से पढ़िए, घर वाले पढ़ें, बच्चे भी हों, मियाँ भी हों, और जिस तरह भी घर का माहौल अच्छे से अच्छा बनाइए, सुन्नतें अदा कीजिए। 4 तरावी में आप एक आधा पारा पढ़ लें, एक पढ़ लें, कुछ हिस्सा छोड़ दें, 6 पढ़ लीजिए, जितनी भी आप पढ़ते हैं कुछ तरावियाँ छोड़ दीजिए बस। उसके बाद आप थोड़ा सा आराम कीजिए। आप चूंकि यूरोप में और ख़ासतौर पर नॉर्वे में तो रातें बहुत छोटी हैं, 2-2.5 घंटे में पूरी हो जाती है रात, लेकिन इवन पाकिस्तान में और इंडिया में, बांग्लादेश में आप देखिए बहुत लंबी रातें होती हैं, तो फिर उसके लिए जितना भी थोड़ा बहुत बीच में सो सकें तो कोई हरज नहीं है। इब्तदाई वक्त में इबादत कर लें, बीच में 1 घंटा सवा सो जाइए, फिर दोबारा उठिए अपने सहरी के टाइम से 1 घंटा सवा घंटा पहले, वुजू कीजिए। आप जो छोड़े हुए नफिल या तरावी या जो भी क़यामुल लैल के नफिल थे, कुरान पाक खोल कर पढ़ लीजिए, कोई हरज की बात नहीं है, ज़ुबानी नहीं आता तो कोई बात नहीं है, पूरा पढ़ लीजिए। आप पूरी इन 10 रातों में कुरान पाक पढ़ने के लिए हर रात के 3 पारे बांट लीजिए। इबादत वो कीजिए जिसमें दिल भी लगे। अल्लाह ताला सूरह तहा के शुरू में कहते हैं, मानजल ना हाजल कुरान ली तशका, हमने ये कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया कि आप किसी मुश्किल में पड़ जाएं। तो इंजॉय कीजिए, कुरान उस वक्त तक पढ़ना चाहिए जब तक उसको इंजॉय कर रहे हैं, ये ना हो कि नींद के खुमार में कुछ गलत से गलत बात निकल जाए। बहरहाल जब आपको लगे कि अब आपको काम करना है, खाना बनाना है, उससे पहले फिर आप आखिरी वितर पढ़ लीजिए। कुरान का बेहतरीन हिस्सा वो है जब नफलों में पढ़ते हैं, सादा कुरान बैठ के पढ़ सकते हैं, आपको खड़े होकर पढ़ना मुश्किल है, नफलों की नियत करके फिर कुर्सी पे बैठ भी सकते हैं, दोबारा फिर खड़े होकर रुकू कर लें, ये सिर्फ आपके अपने और आपके रब के बीच में है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने शबे कदर में ईमान और सवाब की नियत से क्याम किया, इसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। फिर एक बात नोट कीजिएगा कि लैलतुल कदर में सिर्फ रातें ही नहीं, दिन भी शामिल है। दिन में कुछ काम करेंगे, कुछ रातों में करेंगे, हाँ शान जो रात की है वो रात की है। फिर इसके लिए जिस्मानी, रूहानी और कल्बी तौर पे तैयार हों, गुसल कीजिए, साफ सुथरा कंफर्टेबल मौसम के मुताबिक लिबास पहनिए, क्योंकि हमारे कपड़े भी बहुत अहम होते हैं हमारे किसी भी काम के करने कराने में। एक और काम कर सकते हैं, आपके सदका खैरात दीजिए, 1 पाउंड देंगे तो आप देखिए कि अगर ज़र्ब लगा लीजिए उसको 1,000 रातों पे, और एक अमल वैसे रमज़ान में 70 और 70 से सुन्नत नफिल फ़र्ज, ये सब बातें हम सुन चुके हैं, शुरू से सुनते हैं, तो आपका 1 पाउंड हो सकता है 70,000 पाउंड में बदले, ये अल्लाह को बताए और आपको। तो जितना कर सके करें, बच्चों के हाथों से सदका दिलाइए। एक चीज़ जो हम नहीं कर पाते अमूमन, उसका भी जिक्र ज़रूर करूँगी, कि हम अल्लाह ताला के साथ तो बातें करते थकते नहीं हैं, लेकिन बंदों के साथ गिरे पड़ी हुई हैं, दिल में कीन है, सगे भाई हैं तो लड़े हुए हैं, ससुराल से ताल्लुका टूटे हुए हैं, मैके में जाने की इजाज़त नहीं, तो इबादत कबूल नहीं होती। कीने वाले दिल की इबादत कबूल नहीं होती। जो भाई या मुसलमान दूसरे से 3 दिन से ज़ायद अपनी किसी ज़ाती वजह या ग्रज की वजह से ना बोले, और दूसरा कोशिश भी कर रहे और आप नहीं बोल रहे, तो भी इबादत आगे जाने में रुकावट बनेगी। तो दिलों को कीने से साफ कीजिए। जब अल्लाह से जो कह रहे हैं कि अल्लाह इन्ना कफ़ुवन तुहिब्बुल अफ़ाफ़ुन्नी, तो आप क्यों नहीं लोगों को माफ़ करते? क्या हम लोग अल्लाह से वही नहीं मांग रहे होते जो हम खुद नहीं देते? तो ये तो बच्चों वाली आदत होगी, ये बड़ों की आदत तो नहीं हो सकती। फिर इसी तरह से आप देखिए कि घर की लाइट्स खोल सकते हैं, माहौल अच्छा बना दीजिए, सोशल मीडिया पे वक्त ज़ाया ना कीजिए, वो तो फिर भी इधर ही रहेंगे। बदल बदल के नेकियां करें, थोड़ा सा कुरान बैठ के पढ़ लें, दुआएं पढ़ सकते हैं, पूरी कुरान की दुआएं अगर आप खोल कर देखें तो 48 से 50 दुआएं हैं तकरीबन, कुछ लोग एक दुआ को दो कर देते हैं, यदि 48 के करीब दुआएं हैं। हमारे पास एक बुक के फाइनली करीब तरतीब से, यानी सूरह फातिहा, फिर पहले पारे की दुआ है, फिर रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, तरतीब से चलती है। आप 3 3 पारों के एक एक दिन में याद करना भी चाहें तो अगले 10 दिनों में आप दुआएं याद कर सकते हैं, देख के तो आप रोज़ ही पढ़ सकते हैं। सुबह शाम की दुआएं पढ़ें, रात को अल्लाह के नबी सूरत मुल्क और सूरत सजदा पढ़ते थे, आप ख़ास तौर पर इन 10 दिनों में इसकी नियत कीजिए। और याद रखिए कि अकेले भी कुछ हिस्सा इबादत का रखिए और कुछ हिस्सा सबके साथ मिलकर भी कीजिए, फोकस अल्लाह की तरफ हो। और याद रखिए कि अगर आपके मेरे पास बहुत वक्त भी नहीं है ना, तो दिन का कोई 1 घंटा, कोई एक वक्त, एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच का इतिकाफ की नियत कर लीजिए। मकसद खुशू है, मकसूद क्या है कि अल्लाह के साथ मेरा दिल जुड़े, क्योंकि अंबिया कराम भी नबुवत से पहले अल्लाह ताला के बहुत करीब महसूस करते थे। और इसी तरह दिखावे से बचिए, बस जब ख़वातीन अपनी बीमारी के दिनों में होती हैं तो बहुत मोरल डाउन होने लगता है, तो क्या किया जाए अगर ऐसे दिन हो? तो देखिए, नमाज के अलावा आप हर काम कर सकते हैं, जिक्र कीजिए, अज़कार कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, इस रात की ये दुआ तो आप पढ़ ही सकते हैं, कुरान अगर पढ़ने को नहीं भी आपको शरह सदर तो सुन तो सकते हैं। अच्छे से कारी की आवाज़ में आज से भी चूज़ कीजिए, 3 3 पारे करके दिन रात 24 घंटों में पूरे घर वालों को कहेंगे, बस उस वक्त अपने काम करते रहें लेकिन बोलना नहीं है। तो आप एक पारा देखें तो 20 से 25 मिनट में भी, और 40 से 45 मिनट का एक पारा होता है स्लो कारी की आवाज़ में, तो आप इन अगले दिनों में पूरा कुरान पाक घर वालों के साथ मिलके सुने, टीवी पे लगा लीजिए तो आवाज़ और भी अच्छी होगी। फिर इसी तरह आप कुरान की तफसीर सुन सकते हैं, दौरे कुरान तो आजकल चल रहा है माशाल्लाह हमारा, आप उससे फ़ायदा उठा लीजिए। पैगामे कुरान जो सिर्फ 45 मिनट की सीरीज़ है, उससे फ़ायदा उठाएं, कुछ भी कीजिए लेकिन अल्लाह से कुर्ब महसूस करें, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताएं, कभी जिक्र किया, कभी तिलावत की, कभी सुन लिया, कभी पढ़ लिया, कभी कोई लेक्चर सुन सकते हैं इसी बारे में, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप जब इबादत मोड में आ जाएंगे तो उसके साथ बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद फजर की नमाज के बाद बैठे रहिए अपनी जगह पे। थोड़ा सा ही वक्त होता है, लेकिन उस वक्त नींद वैसे बहुत आती है, लेकिन यही इम्तिहान है, तो उस वक्त आप वहाँ बैठकर अस्कार कीजिए, नमाज के बाद के सुबह की दुआएं पढ़ लीजिए और थोड़ा सा कुरान पढ़िए, क्योंकि फजर के वक्त का कुरान तो हाजिर किया जाता है। तो अल्लाह करे कि आप और मैं इन लोगों में शामिल हो जाएं और बेहतरीन तरीके से ये काम करें, और अल्लाह ताला हमें कोई अच्छी नीयत करने की तौफीक दे। एक एक नीयत रोज़ अच्छी कर लीजिए, अपनी एक बुराई पे नज़र कीजिए कि मैं ये नहीं करूँगी, अब ये छोड़नी है। कोई छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बड़े काम करने भी आसान हो जाएंगे। ज़ुबान को ज़िक्र से तार रखिए, कभी सुबहान अल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी अल्लाह अकबर, कभी दुरूद शरीफ पढ़िए, कभी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अलअज़ीम पढ़िए, देखिएगा आपके पास करोड़ों की नेकियां जमा हो जाएंगी। और अगर आप एक देखिए करें तो 83 ईयर 4 मंथ्स बनते हैं एक रात में। तो अल्लाह ताला आपको मुझे बेहतरीन तरीके से काम करने की तौफीक दे। कोई आपने अगर अच्छा सा कुरान का कोर्स ज्वाइन करना है, आप इन दिनों में उसको साइन अप कर सकते हैं, ताकि आप उसका अजर भी बाद में पाएं। हाँ, एक जुमला ना भूलिए, ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्ला, क्योंकि ये गम को दूर करता है, दुख को दूर करता है। हम लोग रमज़ान के बाद इंशाल्लाह एक शॉर्ट कोर्स ऑफर कर रहे हैं डिप्रेशन A to Z, क्योंकि बाज़ लोग लॉकडाउन में रहने की वजह से डिप्रेस फील कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ हमारी एक सामने आ रही है, डोंट बी सैड, तो उसमें हम डिप्रेशन से निकलने की बहुत सारी टिप्स और दुआएं सीखेंगे। माशाल्लाह हर साल एक कुरान का सफ़र हम शुरू करते हैं सबीलुल जन्ना के नाम पे। इस साल एक इंग्लिश में हो रहा है, एक उर्दू में हो रहा है, दोनों के लिंक्स ऑन हो चुके हैं nurulquran.com/ करके। कहने का मतलब यह है कि कोई नेकी जाने ना दे, रोज़ की एक हदीस पढ़ लीजिए, बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपसे मुझे राज़ी हो जाए। कसरत से जन्नत मांगिए, जहन्नुम से पनाह मांगे, अल्लामा हासिब ना हिसाब वहीं यसीरा की दुआ करें। जन्नत में जाने के लिए वो कलेमात जो जन्नत में दरख्त उगाते हैं उनकी ख्वाहिश करें, उनके बारे में सोचें। वैसे 10 बार सूरत इखलास पढ़ना अल्लाह ताला जन्नत में घर बना देता है। हज़रत माज की रिवायत है मुस्नद अहमद में, रब इब्नली इंदका बैतन फिल जन्ना, हज़रत आसिया की दुआ थी जिस पे अल्लाह ने उनका जन्नत में घर बना दिया था। तो अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर।